قسمت فرما
एवं सज्जनों, अपने गुरुजनों का ये दास एवं आप सबको नित्य याद करने वाला ये आपके सामने बैठा हुआ आपका ये नौकर आपको शत शत नमन अर्ज करता है। अपने श्री चरणों में इस दास की नत शिर वंदना स्वीकार कीजिएगा। मैं आप सबके श्री चरणों पर अपना मस्तक नवा के तो आपको प्रणाम करता हूं। स्वामी चिन्मयानंद जी इनके एक बड़ी वरिष्ठ महिला इनकी अनुयायी श्रीमती बिंद्रा दिल्ली में हैं, स्वामी जी महाराज के बहुत समीप। कभी कभी ये श्री राम शरणम दिल्ली में भी आ जाती हैं। हाल ही में आई हुई थी, कहने लगी अनेक वर्ष पहले, मानो 1950 के आसपास की बात होगी, स्वामी सत्यानंद जी जो मेरे दादा गुरु हैं उनके समय की बात है, मैं उनके दर्शन करने के लिए बाराखंबा रोड पर प्राय चला जाती। एक दिन गई हुई थी, उनके इंतजार कर रही थी, बाहर निकले, मुझे कहने लगे देवी वेदांत तो तुम सुनती हो, सुनती रहना। स्वामी जी महाराज उस महिला से संबोधित हो रहे हैं, वेदांत तो देवी तुम सुनती हो, सुनती रहना, लेकिन जिंदगी में कभी भक्ति को नहीं छोड़ना। ये स्वामी जी महाराज ने उस महिला को उपदेश दिया। श्रीमती बिंद्रा कहती हैं, तब से लेके मानो मुझे ये लगा स्वामी जी महाराज मुझे ये कह रहे हैं, हर एक सफल साधक के जीवन में ज्ञान एवं भक्ति का समन्वय होना चाहिए, दोनों चीजों का मिश्रण होना चाहिए। जब भक्ति ज्ञान युक्त हो जाती है तो भक्ति और उज्ज्वल हो जाती है, उसे संत महात्मा पराभक्ति कहते हैं, उसे भक्ति की पराकाष्ठा कहते हैं। भक्ति के साथ साथ मानो उस व्यक्ति को जो बोध होना चाहिए वह भी हो गया हुआ है, एक परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में कोई नहीं, मैं संसार का नहीं, मैं परमात्मा का हूं, सब कुछ परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं। एक भक्त को जिसको ये बोध भी हो जाता है, जिसको ये ज्ञान भी हो जाता है, तो संत महात्मा उसे कहते हैं कि ये भक्त पराभक्त हो गया हुआ है। आज साधक जनों, थोड़ा समय जो शेष बचा है इसमें इसी पराभक्ति की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ऐसा मत सोचिएगा अभी हमारे जीवन में भक्ति ही नहीं आई है तो पराभक्ति कब आएगी। बात तो उसी की करनी चाहिए ना जो हमें उपलब्ध करना है जीवन में। कभी भी व्यक्ति लेट नहीं है, कभी भी शुरू करेगा तो उसके हिसाब किताब में जो कुछ एकत्रित होता है, जो संचित होता है, उसे कुछ छीन नहीं सकता। ये डॉक्टरी नहीं है। आज आप डॉक्टर हैं, अगले जन्म में डॉक्टर बनना होगा तो आपको केजी में ही एडमिशन लेनी पड़ेगी। भक्ति की महिमा महाराज इस प्रकार की है, जहां से आपने छोड़ी है अगले जन्म में आप वहीं से उसे जारी करेंगे। ये मिटती नहीं है। नाम की कमाई जो आपने आज थोड़ी बहुत जितनी भी संचित कर ली है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसका कोई नाश नहीं कर सकता, वह आपकी खाते में जमा रहेगी। सत्कर्मों की पूंजी, नाम की पूंजी जो आपने आज एकत्रित करी है, वह आपकी है, आपकी ही रहेगी, कोई उसे छीन नहीं सकता। अगले जन्म में आपको अपनी यात्रा वहीं से आरंभ करनी है। यह भक्ति की महिमा है और चीजों की नहीं। डॉक्टर बनना है आपको अगले जन्म में। इस जन्म में आप डॉक्टर हैं, बहुत रिनाउंड न्यूरोसर्जन, कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं आप, बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। अगले जन्म में भी यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको अपनी पढ़ाई केजी से शुरू करनी पड़ेगी, नर्सरी से शुरू करनी पड़ेगी। आप वहीं से आगे से शुरू नहीं कर सकते। भक्ति में ऐसा मेरी माता नहीं है। आज देखें ये भक्ति क्या है। माताओं सज्जनों, परमेश्वर साक्षी है, जो कुछ आपकी सेवा में कहा जाएगा शास्त्र के अनुसार कहा जाएगा। मत सोचिएगा ये तुच्छ व्यक्ति, ये अनपढ़ व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति किसी की आलोचना करने के लिए आया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इतना तो मेरा कर्तव्य ही बनता है कि मैं आपको स्पष्ट तो करूं, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे। यदि गलती कर रहे हैं तो उस गलती को छोड़ना चाहिए, ताकि हम अपनी साधना में अग्रसर हो सके, आगे बढ़ सके। क्या यहां से निकलते निकलते पीपल का पेड़ आया है, उसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर देना, इसे भक्ति कहा जाता है? क्या रास्ते में हनुमान जी का मंदिर आया है, उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम किया, प्रभु मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ा है, इसे हटाइएगा, क्या इसे भक्ति कहा जाता है? या भगवान शिव का मंदिर आया, वहां जाके जल चढ़ा दिया और उन्हें कहा मैं परीक्षा देने के लिए जा रहा हूं, अभी प्रणाम करता हूं, पास हो गया तो 5.25 रुपये का या 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, क्या इसे भक्ति कहा जाता है? मां शेरामाली का मंदिर आया, अपने प्रणाम किया, वहां जाके कुछ प्रसाद चढ़ाया और उनसे कहा मेरे घर पौत्र नहीं है, पौत्र दे मां, तू जानती है जिस मां के कुख में गोद में औलाद नहीं होती उसका क्या हाल होता है, तू वेदना जानती है, कृपा कर मेरे पौत्र के घर पौत्र नहीं है, या मेरे पुत्र के घर पुत्र नहीं है, कृपा करके वह पुत्र दे, क्या इसको भक्ति कहा जाता है? संत महात्मा कहते हैं माता नहीं, ये भक्ति नहीं है। आप आस्तिक तो हैं, आपको परमेश्वर में विश्वास तो है, लेकिन आप भक्त नहीं है। बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करते भक्तजनों, जो मोटी बातें हमें जीवन में पकड़नी है बस उन्हें ही करेंगे। तो फिर भक्ति क्या है? यदि ये सब चीजें भक्ति नहीं है, पीपल को मत्था टेकना भक्ति नहीं है, हनुमान जी के मंदिर के आगे दिख से निकलते हुए या कोई प्रसाद चढ़ाते हुए उनसे कोई मांगते हुए ये भक्ति नहीं है, तो फिर भक्ति क्या है? देवऋषि नारद, आप उन्हें जानते हैं, वे भक्ति के आचार्य हैं। वे फरमाते हैं ये आस्तिकता कहिए या इसे तुच्छ गौणी भक्ति कहिएगा, भक्ति तो है ये, कम से कम आपको विश्वास तो है ना, मैं यहां आके कुछ मांगूंगा तो मुझे मिलेगा, ये विश्वास तो है ना आपको, तो भक्ति तो है ये। लेकिन तुच्छ भक्ति है, गौणी भक्ति है, निम्न कोटि की भक्ति है, जिस भक्ति की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये वह भक्ति नहीं है। तो मेरी माता वह भक्ति क्या है? संत महात्मा फरमाते हैं जब परमात्मा के मिलन के लिए हृदय में तड़प उठे, एक शूल सा लगे, तड़प उठे हृदय में, वेदना उठे, आदमी व्याकुल हो उठे। युग बीत गए हैं, इतने जन्म बीत गए हैं, अभी तक जिस काम के लिए यह मानव शरीर मिला हुआ है वह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसे राम मिलन कहा जाता है। तो संत महात्मा कहते हैं यह परमात्मा की भक्ति है। शुभारंभ, एक दर्द, एक टीस, एक वेदना, एक पीड़ा हृदय में जब उठे, जिस काम के लिए मुझे जन्म मिला हुआ है, परमेश्वर के मिलन के लिए, परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए, परमेश्वर के दर्शन के लिए, वह अभी पूरा नहीं हुआ। संत महात्मा कहते हैं जब ये पीड़ा हृदय में होने लगे तो कहिएगा कि ये भक्ति है। जब ये पीड़ा होने लग जाए तो घुटनों की दर्द महसूस नहीं होती। आदमी शरीर के साथ और शरीर के रोगों के साथ तभी तक चिपका रहता है जब तक परमेश्वर के मिलन की तड़प हृदय में नहीं जगती। गुर्दे की जब दर्द होती है, बड़ी पीड़ा होती है, आप लोग जानते हो, तत्काल अस्पताल जाना पड़ता है। उसी वक्त यदि आपको दांत की भी दर्द है तो मेरी माता, दांत की दर्द की आप परवाह नहीं करते, इसकी कोई बात नहीं, गुर्दे की दर्द जो है ये ठीक होनी चाहिए। परमेश्वर के मिलन के लिए जब दर्द हृदय में उठती है तो घुटनों की दर्द, मुझे दमा है, मुझे ये हृदय रोग है, मुझे ये अनेक प्रकार के डिप्रेशन है, मुझे इत्यादि इत्यादि रोग, इनकी याद ही नहीं आते। ये भक्ति की साधक जनों महिमा है। भक्ति का शुभारंभ नाम की उपासना से होता है। जब आपने राम राम जपना शुरू कर दिया, ओम ओम जपना शुरू कर दिया, शिव शिव जपना शुरू कर दिया, नारायण नारायण जपना शुरू कर दिया, जिस भी आप नाम के उपासक हैं, जब आपने वह नाम जपना आरंभ कर दिया तो यहां से ही भक्ति का शुभ आरंभ हो जाता है। संत महात्मा कहते हैं इसका शुभ आरंभ तो है, इसका अंत नहीं है। राम मिलन के बाद भी भक्ति चलती रहती है, भक्ति का अंत नहीं है, चलती रहेगी। ठीक इसी प्रकार से नाम की आराधना जब व्यक्ति आरंभ करता है, इसका आरंभ तो है लेकिन इसका अंत नहीं है, चलती रहता है, अविराम चलता रहता है, ये अखंड चलता रहता है। नाम का स्मरण हर वक्त चलता रहता है, भले ही आपको परमात्मा का साक्षात्कार भी क्यों ना हो चुका हो, ये बंद नहीं होता, बल्कि और तीव्रता से ये चलता है। क्या होगा इससे? नाम जपने से, परमात्मा की भक्ति करने से क्या होगा? होता तो बहुत कुछ है भक्तजनों, उस सारे की चर्चा के लिए तो समय नहीं है, पर मुख्य बात आज आपकी सेवा में जो थोड़े से क्षणों में कहनी है वह मात्र इतनी, आप मेरे साथ सहमत हो, शास्त्र ऐसा कहता है मरते वक्त आदमी को 20 करोड़ बिच्छू के काटने की जो दर्द होती है वह होती है। 20 करोड़ बिच्छू काटने की जो दर्द होती है वह हर इंसान को मरते समय हुआ करती है। खुशकिस्मती है हमारी, हम मरने के बाद बता नहीं सकते कि हमें कितना दर्द हुआ था, ना यही बता सकते हैं। गर्भ में 9 मां रहे हैं, वहां क्या हमारे साथ बीती है, ना हम ये बता सकते हैं, और ना ये बता सकते हैं कि मरते वक्त कितनी पीड़ा हुई थी, इसका भी हिसाब किताब हम बता नहीं सकते। संत महात्मा जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने समाधि में ये सब चीजें देखी हैं, वे कहते हैं गर्भ की पीड़ा भी बहुत है और मरने की पीड़ा भी बहुत है। इसलिए एक बात तो स्पष्ट हो गई ना, इस जन्म मरण के रोग से, भव रोग जिसे कहा जाता है, इससे छुटकारा पाना है। कैसे? संत महात्मा कहते हैं भक्ति करने वाले भक्त की मृत्यु मंगलमय हो जाती है। थोक मजा के कहते हैं, मरने का भय किसे है, मरने की चिंता किसे है, उसे ही ना जिसका अपना खाता साफ नहीं है। जीवन भर का जो खाता है यदि वह साफ नहीं है तो व्यक्ति मरने से भयभीत होगा। मरने का भय भयराज। देखो ना दुकानदार यहां बैठे हुए होंगे, कुछ इनकम टैक्स की चोरी करी है, सेल टैक्स की चोरी करी है, कल डेट है, इनकम टैक्स ऑफिसर ने बुलाया हुआ है या सेल टैक्स वाले ने बुलाया हुआ है, भक्तजनों रात भर नींद नहीं आती, एक साल का हिसाब किताब देना है, तो ये हालत है जहां पूरे जन्म का, पिछले जन्मों की बात छोड़िएगा, जहां पूरे जन्म का हिसाब किताब देना है उस परमात्मा देव के सामने, भय तो लगेगा ही, क्यों? खाता साफ नहीं है। परमात्मा की भक्ति करके यदि अपने खाते को साफ कर लिया हुआ है, अपने आप को निष्पाप बना लिया हुआ है, परमेश्वर के नाम की आराधना करके भीतर जो पाप की कमाई करी हुई है उसे भस्मीभूत कर लिया हुआ है, तो क्या डर है? अभी भी चलो चलो, क्या परवाह है? डर तो तभी है। आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के, अमृतवाणी का अभी पाठ होने जा रहा है, सभी मेहरबानी करके मिल के पढ़िएगा। जिसके पास अमृतवाणी नहीं है वह बेशक ले लें, जो बांटने वाले हैं कृपया देखें कि सबके पास अमृतवाणी हो, घूम के देख लें, सबको अमृतवाणी मिलनी चाहिए। अपने गुरुजनों का एवं आप सबके श्री चरणों का ये दास आप सबकी सेवा में बहुबार प्रणाम अर्ज करता है, मेरी नत शिर वंदना स्वीकार कीजिएगा। दास उसे ही कहा जाता है जो किसी दूसरे की सेवा में उपस्थित होता है। मैं ही आपके श्री चरणों में आया हूं, इसलिए आपका दास ही हुआ आपका नौकर। स्वामी जी महाराज द्वारा रची हुई अमृतवाणी का पाठ अभी आप सब ने मिलकर किया है, इसमें उन्होंने राम नाम की महिमा का बखान किया हुआ है। आप सब से निवेदन है, यदि आपको ये लघु पुस्तक पसंद आई हो और आप इसका पाठ रोज करने का वायदा करते हैं तो ये हमें लौटा के ना जाइएगा, बेशक अपने साथ लेते जाइएगा। ध्यान दें, आप श्री राम मंदिर में बैठ के तो वायदा कर रहे हैं कि आप इसे रोज पढ़ेंगे। स्वामी जी महाराज ने कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं रखा, आप इसे नहा के पढ़िएगा, सुबह पढ़िएगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं बिना नहाए पढ़िएगा, पर पढ़िएगा जरूर, किसी वक्त भी पढ़िएगा, सोते वक्त पढ़िएगा, जागते वक्त पढ़िएगा, दोपहर को पढ़िएगा, रात को पढ़िएगा, पर पढ़िएगा जरूर। यदि आप दिन में एक बार इसे पढ़ने का वायदा करते हैं तो आप बेशक ये लघु पुस्तक अपने साथ ले जाइएगा, बाकी वापस करते जाएं। पूज्य देवी और सज्जनों, बहुत दिनों से ऐसा मैंने सुना है, यहां के पुजारी पंडित जी महाराज आपको उपदेश दे रहे हैं, मैं आ रहा हूं, दीक्षा लीजिएगा, राम नाम का मंत्र अपने अंतःकरण में स्थापित करवा लीजिएगा। मैं यहां पर एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, मेरा पंडित जी के साथ कोई संबंध नहीं है। आपको ये कहना कि आप दीक्षा लीजिए, इनका भी कोई स्वार्थ नहीं है। दिल्ली से चल के यहां आके आपको मंत्र देना, इसमें मेरा भी स्वार्थ कोई नहीं है। दीक्षा देने के बाद मुझे कोई पुरस्कार नहीं कहीं से मिलने वाला। ये बातें थोड़ी स्पष्ट करने की आवश्यकता थी, कहीं मन में आए, कोई ना कोई तो स्वार्थ होगा ही, राम दरबार है ये कहने की आवश्यकता नहीं। कहीं मत समझिएगा कि मेरा अहंकार बोल रहा है, मैं साधक जनों अपने खर्चे पर आया हूं और अपने खर्चे पर ही वापस जाऊंगा। मैं भी आप ही की तरह नौकर था, एम्प्लॉई था, डॉक्टर था, मुझे जो पेंशन मिलती है मैं उसी में से निर्वाह करता हूं, मैं किसी से मांगता नहीं। ट्रस्ट है, बहुत सब कुछ है, परमेश्वर की कृपा है, लेकिन मैं जो मुझे परमेश्वर पेंशन देते हैं मैं उसी से निर्वाह अपना करता हूं। मत सोचिएगा यहां आने में कोई मेरा स्वार्थ है, मुझे कोई पता नहीं क्या मिल जाएगा, इतना ही हित है साधक जनों, ठोक बजा के कहता हूं, मेरे जैसे व्यक्ति को यदि राम नाम जपने से लाभ हो सकता है, आप जानते ही हैं कि एक डॉक्टर का जीवन किस प्रकार का हुआ करता है, मेरे जैसे को यदि लाभ हो सकता है तो मेरे मन में प्रबल इच्छा है कि आप सबको भी राम नाम से वैसा ही लाभ हो। इसके अतिरिक्त मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो अभी राम मंत्र आपको देने के बाद, राम मंत्र देना अर्थात राम नाम किस प्रकार से जपना है, किस प्रकार से ध्यान लगाना है, इस विधि को सिखाने को ही दीक्षा कहा जाता है। ऐसा ही आप बता रहे हैं ना, यही विधि सिखा के आपको तो यहां से प्रस्थान करूंगा, चला जाऊंगा। उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई नाम की कमाई करने में कठिनाई है तो आपको एड्रेस दिया जा रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। कमाई तो आप ही को करनी है। इसके बाद कौन राम? वह राम जो परब्रह्म परमात्मा है, जिसे सर्वशक्तिमान कहा जाता है, गुरवाणी में जिसकी महिमा गाई है वह राम, बाबा नानक ने जिस राम का नाम जपा है वह राम, वह राम जिसे कबीर साहब जपते रहे हैं, वह राम जिसे रहीम जपते रहे हैं। मानो राम नाम जपने के लिए किसी प्रकार का कोई भेद ही नहीं है। सिख भी जपता है, मुसलमान भी जपता है, हिंदू तो जपता ही जपता है। वेदों पुराणों में जिसे प्रणव कहा जाता है, जिसे ओम कहा जाता है, वही स्वामी जी महाराज ने राम नाम कहा है। बस सर्वशक्तिमान जिसमें हर कोई रमता है, जो हर एक में रमता है वह राम, उसी राम नाम की हम उपासना करते हैं। दो शब्द आपकी सेवा में, इसे अनपढ़ भी जप सकता है, गरीब भी जप सकता है, अमीर भी जप सकता है, किसी भी तरह का व्यक्ति पापी है, पुण्य आत्मा है, शराबी है, ज्वारी है, सब जप सकते हैं। आप जिम्मेदार हैं तो भी जप सकते हैं, आप व्यापारी हैं तो भी जप सकते हैं, आप कर्मचारी हैं तो भी जप सकते हैं। कैसी परमेश्वर की कृपा है, कैसी राम नाम की महिमा है। घर का नौकर भी वही मंत्र जपता है जो घर का स्वामी जपता है। हर जाति का व्यक्ति जप सकता है, नीची जाति का भी जप सकता है, अशिक्षित भी जप सकता है, विद्वान भी जप सकता है, ब्राह्मण भी जप सकता है, तो शूद्र भी जप सकता है। किसी को इस मंत्र के जपने में कोई मनाही नहीं है। मानो देशी विदेशी हर कोई जप सकता है, हर एक स्थान पर जपा जा सकता है। मत सोचिएगा ये शमशान घाट है इसलिए यहां राम मंत्र नहीं जपा जा सकता। डट के जपिएगा, वहां भी जपिएगा। आप लैट्रिन बाथरूम में है वहां भी जपिएगा। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां ये राम मंत्र नहीं जपा जा सकता, कोई ऐसा समय नहीं जहां ये राम मंत्र नहीं जपा जा सकता, कोई ऐसी स्थिति नहीं जहां ये राम मंत्र नहीं जपा जा सकता। आपको टूथपेस्ट से अपने दांत मुंह साफ करने की आवश्यकता नहीं है राम राम जपने के लिए, आप उससे पहले भी जप सकते हो। नहाने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप उससे पहले भी जप सकते हो। भक्तजनों हर एक के सिर पर कोई दावे से नहीं कह सकता, मैं कहता हूं हर एक के सिर पर मौत मंडरा रही है। कब किसको इस मौत में दबोच लेना है कुछ नहीं कहा जा सकता। उसने दांत साफ करने का समय नहीं देना, उसने नहाने का समय नहीं देना, बातें नहलाई जाओगे आप। इसलिए ये जो अवसर, सुनहरी अवसर मेरे राम ने प्रदान किया है, आप सुबह उठते ही राम राम जपना शुरू करिएगा, न जाने कब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। प्लीज डोंट वेट, ये राम नाम की महिमा है। साधक जनों, इससे अधिक राम नाम के विषय में ना कहता हुआ आज जो दो शब्द आपकी सेवा में कहने के लिए गुरुजनों की ओर से प्रेरणा मिली है, वह कहने की इजाजत दीजिएगा। ये सेंटर सैनिकों से मेरा बहुत लगाव है। परमात्मा ने उन्हें चुन के तो अपनी नौकरी प्रदान करी हुई है।